पंचास्तिकाय संग्रह लेक्चर नंबर 16 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सौवसाहूणं इन्द्रसदवन्द्यानं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणम् जिदभवानम्। ये पंचास्तिकाय संग्रह नामक जो शास्त्र है उसकी 9 नंबर की गाथा को हम देखते हुए पृष्ठ क्रमांक 59 पर आए हैं। यहाँ बीच में जो है बिल्कुल बीच में से एक नया पैराग्राफ चालू होता है, द्रव्यना जटला गुण पर्यायो छे, मिल गया सबको, वहां से हम पढ़ेंगे। देखो कल अपनी बात ये हो रही थी कि दो द्रव्यों में भिन्नता होती है इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है, और यहाँ पर ये भी बात बताई गई थी कि अग्नि से पानी गर्म नहीं होता है। अब अग्नि यानी उन्होंने एक अखा द्रव्य लिया और पानी ये भी एक द्रव्य लिया और उसका एक दूसरे में बिल्कुल सत्ता भिन्न है इसलिए एक सत्ता दूसरे सत्ता का कार्य नहीं करती, ऐसी बात बताई। और हम पानी को स्कंद समझते हैं और अग्नि को भी स्कंद समझते हैं, तो पुद्गल द्रव्य के वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से अगर हम देखेंगे तो उनमें अन्योन्या अभाव देखा जाता है, तो इसलिए वो एक दूसरे का कार्य नहीं करते हैं, ये बात निश्चित होती है। तो अभी हम शुरू करते हैं, द्रव्यना जेटला गुण पर्यायो छे। तो द्रव्यना गुण केटला छे ने पर्याय केटला छे बेन, अने पर्यायो अनंत छे, शाबाश। तो क्या कहते, देखो द्रव्यना जेटला गुण पर्यायो छे ते बधाय वडे ते द्रव्यनी जे सत्ता जणाय छे, आथी गुण पर्याय रूप सत्ता लक्षण छे ने द्रव्य ते लक्ष्य छे। क्या बताया, देखो गुण कहो या लक्षण कहो एक ही बात है। तो क्या कह रहे हैं, वो जो अगर द्रव्य गुण और पर्याय जो लक्षण है तो द्रव्य लक्ष्य है, सत्ता ने द्रव्य जुदा नथी। तेथी पहला अस्तित्व नास्तित्व उत्पाद वे ध्रुव वगैरह जे लक्षणों थी सत्ता ने ओळखावी हती ते लक्षणों पण द्रव्य थी जुदा नथी, द्रव्य कहता तेमा ए बधु समाई जाय छे। द्रव्यनी सत्ता स्वथी अस्तिरूप अने परथी नास्तिरूप छे, सामान्यपणे बधु सत होवा छता दरेकनी विशेष सत्ता भिन्न भिन्न छे। अने सामान्य रूप से देखा जाए तो वो एक महासत्ता होगी और भिन्न भिन्न रूप से देखा जाए तो अवांतर सत्ता होती है। घणा जीवो एक ज जातना विचार करे तो तेनू बळ भेगू थईने बीजा ऊपर ते विचारना आंदोलन ने असर थाय ए मानने स्वतंत्र भिन्न भिन्न सत्ता नु भान नथी। क्या समझ में आया कि नहीं, यानी जैसे महात्मा गांधी का कोई विचार सरणी थी तो उनके जैसे सुनने समझने वाले बहुत हो गए तो उनका असर एक दूसरे पे आ गया है ऐसा नहीं है, ये बताते। बधा द्रव्यो सत होवा छता कोई परमानंदमय छे कोई दुखी छे कोई जड़ छे एम दरेकनी सत्ता भिन्न भिन्न छे, एक अल्पज्ञ बीजो सर्वज्ञ ते बधा महासत्तामां समाई जाय छे, કોઈ અલ્પજ્ઞ મટીને સર્વજ્ઞ થઈ જાય ત્યાં બધા જીવ સર્વજ્ઞ થઈ જતા નથી, કેમ કે અવાંતર સત્તા ભિન્ન ભિન્ન છે અને મહાસત્તા પણ તો એમને એમ જ છે. એ બહુ આસાન છે સમજને કે લીએ. સત્તાનું આવું સ્વરૂપ જાણે તેને સમ્યક જ્ઞાન થઈને કેવળ જ્ઞાન થયા વિના રહેતું નથી. દ્રવ્યનું લક્ષણ સત્તા છે, સત કહેતા તેમાં બધું સમાઈ જાય છે. દ્રવ્ય છે, ઉત્પાદ છે, વ્યય છે, ધ્રુવ છે, ગુણ છે, પર્યાય છે, બધું સત છે. તેમાં એકલી વિતરાકતા આવે છે, કે પ્રત્યેક કા અપના અપના દ્રવ્ય હૈ, અપના અપના સત હૈ, અલગ અલગ હૈ, તો એક દૂસરે કા કુછ નહીં કર સકતે હૈ, ના દૂસરા મેરા કુછ કરેગા યા મેં પર કા કુછ કર સકુંગા, એસી વસ્તુ વ્યવસ્થા નહીં હૈ, તો વિતરાકતા આયેગી. ક્યાં કરના હૈ? કુછ નહીં, અપને સ્વરૂપ કો દેખના હૈ, બાકી પરમે કુછ જાણે કી જરૂરત હી નહીં, ક્યોંકિ તું જા હી નહીં સકતા. બધું સચ છે એમ જાણનાર જીવના ધ્યાનમાં આ આમ કેમ એવો પ્રશ્ન જ નથી, જ્ઞાતામાં આ આમ કેમ એવો વિકલ્પ નથી. એક જીવ સર્વજ્ઞ સ્વભાવની પ્રતીત કરે છે, બીજો જીવ સર્વજ્ઞને કબૂલતો નથી. જ્યાં તે બંનેની તેવી પર્યાય સચ છે એટલે સતને ફેરવવાના વિકલ્પનો ધ્યાનમાં અવકાશ નથી. એક જીવને સ્વભાવની શ્રદ્ધાથી પ્રથમ સમ્યક પ્રગટ્યું ને બીજા જીવો તે વખતે સર્વજ્ઞને માનતો પણ ન હતો, અને પછી સમ્યક દર્શન પ્રકટ કરીને પહેલા જીવના કરતા પહેલો વહેલો સર્વજ્ઞ થઈ જાય આ જ્ઞાનીને એમ આશ્ચર્ય થતું નથી આમ કેમ.
ખ્યાલ મેં કિસકી યાદ આ ગઈ? એ પઢા ના, કિસી કો પહેલે સમ્યક તો પ્રગટ્યો અને બીજો જીવ તે વખતે સર્વજ્ઞને માનતો પણ ન હતો, પછી સર્વજ્ઞ પ્રકટ કરીને પહેલા જીવના કરતા વહેલો સર્વજ્ઞ થઈ જાય. બોલો. હા, એસા કોઈ
નહીં,
અભી હોને વાલા હૈ શ્રેણીક રાજા છેલના સમય દ્રષ્ટિ હે ને, ઓર તભી વો સર્વજ્ઞ કો માનતા નહીં થા, જૈન ધર્મ કો ભી નહીં માનતા થા, ઓર ફિર બાદ મેં સમય તો પ્રકટ ક્યા શાહી સમય દિશા તીર્થંકર પ્રકૃતિ બાંધી ભી 84,000 વર્ષ મેં મોક્ષ તીર્થંકર હોકર મોક્ષ ચલે જાયંગે, ઓર યે તો સમય દૃષ્ટિએ દેહ મેં જાયેગી, કિતને સાગરોં કી આયુ કરકે તબ તક તો ચૌથે ગુણ સ્થાન મેં રહેગી. ખ્યાલ મેં આતે હૈ બાત? ઉસકા મોક્ષ કભી હમકો માલૂમ નહીં હૈ. યાની હા, ક્યા એસા હરેક જીવ કા અપના અપના પર્યાયો કા ક્રમ સુનિશ્ચિત હૈ, યહી તો બતા, એસા ક્યુ યે પ્રશ્ન હી નહીં આતા. અભી ક્યા લિખા હૈ? આમ કેમ એમ આશ્ચર્ય નથી થતું, સવાલ હી નહીં ના. અભી કિતને જીવ, 14 જીવ સમાજ મેં પડે હૈ, કોઈ નિગોદ મેં કોઈ, જિન્હોને કભી ઉપશમ શ્રેણી ભી ચઢકે ઉતરી થી, એક બાર નહીં ચાર ચાર બાર, આતા હૈ ને શાસ્ત્ર કા વચન હૈ ના, અસંખ્યાત બાર સમ્યક હોકે છૂટા હૈ, અસંખ્યાત બાર પાંચવા ગુણસ્થાન હોકર છૂટા હૈ, ચાર ચાર બાર ઉપશમ શ્રેણી ચઢકે ઉતરે હૈ, એસે ભી કોઈ જીવ હૈ જિનકા ભી વો નિગોદ મેં પડે હૈ? અભી જબ એ માંડેગા તો ભી શપક માંડે, ચાન્સ કે અભી જરૂરત નહીં, ઉસમે ચાન્સ ક્યા હૈ? यानी उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अभी समाप्त होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि एक बार हुआ है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन जो अनंत काल है वो अधिक से अधिक उतना ही उसका मोक्ष प्राप्ति का काल.
देखो आपकी भाषा में उसको पांचवी बार चांस नहीं कह रहे हैं, चार बार उसने चांस ही गंवाया है, चपक के जगह उपशम श्रेणी मांडी है. ये पहले ध्यान रखना कि कोई जानबूझ कर समझ बूझ कर कोई श्रेणी नहीं चढ़ते, જીસકે અન્ય અનેક કારણે આયુ બાંધી બાકી હૈ, અભી સંસાર કા ટાઈમ બાકી હૈ, તો એસા જીવ
યાને વો ભી પુરુષાર્થ હૈ, ઉપશમ શ્રેણી વાલા ભી પુરુષાર્થ, અભૂતપૂર્વ પુરુષાર્થ હોતા હૈ વહાં પર ભી.
ઓર દેખો ઉપશમ શ્રેણી માનતા હૈ તો ખાલી એસા નહીં, ઉસકે કિતને કર્મો કી નિર્જરા હોતી હૈ, અસંખ્યાત ગુના અસંખ્યાત ગુના.
नहीं अभी तक आएंगे क्योंकि नीचे आएगा तो फिर बांधेगा मिथ्यात्व में जाने कर फिर उसने संचय कर लिया है, पर वहाँ का पुरुषार्थ कोई अभूतपूर्व हुआ ही था उसका, अभी फिर नीचे आ गया फिर मिथ्यात्व में चला गया, वो बात जुड़ी है।
इसलिए यहाँ कहते हैं त्याग, सेकंड लाइन में लिखा है 60 पृष्ठ पर, त्याग ज्ञानी ने एम आश्चर्य तत्व न थी, क्योंकि ज्ञानी तो जानता है कि जिस समय जो होना है वो होगा। आम केम महासत्ता में ते बधु सच्छे तेना पेटा भेद पन सच्छे, चैतन्य नो स्वभाव तो ज्ञान छे, हूँ ज्ञान छू ए जगत में ज्ञानी अज्ञानी वगैरह बधु जेम छे तेम तेनो हूँ पन तेनो हूँ तो जाननारो छू, आवी प्रतीत करनारो जीव धर्मी छे। स्वभाव में एकाग्र थयो त्या एक लक्षण में केवल ज्ञान थई जाय छे, त्या आम केम एवं आश्चर्य नथी पन वितराकता छे। काले धर्मनो विरोधी होय ने आजे सवड़ो पड़ी ने ज्ञान पामी जाए ने सर्वज्ञ थई जाए, क्या बताते हैं कि पहले कभी खोटा मार्ग पे चलता होगा, बाद में उसको पता लगा कि अरे हम गलत जगह पे जा रहे हैं, अभी यहाँ तो सही बात हो रही है, तो कहते केवल क्षण में केवल ज्ञान पामे, तो एक क्षण में थोड़ी बात है, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त होने को, जिसको हम कहते हैं क्षोभम ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त होने को एक समय लगता है, कि 12वें गुणस्थान तक तो क्षोभम ज्ञान ही है, 13वें में गया तो क्षयिक हो गया, तो एक समय में हो गए, तो एक क्षण में केवल ज्ञान थी जाए। क्या आम केम एवं आश्चर्य नहीं पन वितरकता छे, काले धर्मनो विरोधी होय ने आजे सवड़ो पड़ी ने ज्ञान पामी जाय छे ने सर्वज्ञ थई जाय, त्या ते पण सच छे, सामान्य पण सच छे ने विशेष पण सच छे।
इसका अर्थ क्या है? हाँ देखो, द्रव्य को सामान्य कहा और उसकी पर्याय को विशेष कहा, द्रव्य तो सत है ही है, उसकी प्रत्येक पर्याय पण सत है, यानी उसका ऐसा ही राग क्यों हुआ, वो ऐसा अभी केवल ज्ञान कैसे हुआ, अभी अभी तो इतना था अंतर्मूर्त, पहले तो मिथ्यात्व में था, फिर अंतर्मूर्त के बाद संयमी हुआ, श्रेणी चढ़ गया, अभी केवल ज्ञान हुआ, ऐसा कैसा, तो कहते ऐसा ही पर्याय का वही क्रम है, वो निश्चित है, वो सत है, इसको कहते सामान्य तो सत है ही है, उसका विशेष भी सत है, यानी प्रत्येक पर्याय भी सत है, अपनी जगह पर है, वर्तमान में तो है ही है, वो तो विद्यमान है, परंतु जो भविष्य की है वो भी सभी सुनिश्चित है, बिल्कुल क्रमबद्ध है ही, तभी तो ये बात होगी सिद्ध। किसी एक को इसको एक्सेप्ट करो तो क्रमबद्ध सिद्ध होता है, क्रमबद्ध की बात निर्णय करो तो ये बात सिद्ध हो जाती, सर्वज्ञ की सिद्धि हो जाती।
मिथ्यात्व छे ते मिथ्यात्व ज रहे एम नथी, मिथ्यात्व पलटी ने सम्यक्त्व थई जाए त्या मिथ्यात्व नो व्यय अने सम्यक्त्व नो उत्पाद तथा वस्तु नी ध्रुवता एम उत्पाद व्यय ध्रुव पण सत्मा समाई जाए छे। आत्मा सत छे एम कहता उत्पाद व्यय ध्रुव त्रणे समाई जाए छे, छता जे उत्पाद स्वरूप सत्ता छे ते नाश स्वरूप नथी एटले व्यय स्वरूप नथी, जे उत्पाद व्यय स्वरूप सत्ता छे ते ध्रुव रूप नथी, सम्यक्त्व नो उत्पाद छे ते मिथ्यात्व नो व्यय छे ने द्रव्यपने ध्रुवता छे, तेथी एक एक मां त्रण लक्षण नथी आवता, आ रीते महासत्ता मां उत्पाद व्यय ध्रुव त्रणे लक्षणों समाई जाए छे ने अवांतर सत्ता मां उत्पाद व्यय ध्रुव त्रणे अंशो भिन्न भिन्न छे, वहां लक्षणों एकत्र बताया और यहाँ अंश भिन्न भिन्न बताया। त्रिकाणवर्ती तत्वो सत छे, द्रव्य सत छे ने तेनी एक एक समय नी त्रणे कारणी पर्यायो पण सत छे, पर्याय मां पहला उत्पाद न होय ने पछी नवो उत्पाद थाय तो पण सत छे, आवू ज्ञान कोने थाय?
देखो इसका अर्थ ऐसा है, द्रव्य में तो अनादि अनंत पर्याय सुनिश्चित है, अपने अपने समय पर है। अभी जिस पर्याय अभी मान नहीं ना, हम 10 नंबर के पर्याय की बात कर रहे हैं। पहले उसके एक नंबर ऑफ चली गई, उसके बाद हम समथिंग और 10 नंबर, तो उसके अभी अभी नहीं थी, 10 नंबर की पर्याय नहीं थी। पहले क्या देखा, पर्याय में पहला उत्पाद न होए, यानी अभी 10 नंबर की पर्याय भी नहीं थी, 8-9 कुछ चल रही थी, पच्चीस नवो उत्पाद था, अभी 10वीं आ गई। पहले तो 7वीं 8वीं 9वीं चली, तब तक तो 10वीं पर्याय नहीं थी, अब 10वीं नंबर के पर्याय हो गई। इस टोपन वो सत है, वही 10 नंबर की नहीं थी, हुई। आप कहेंगे नहीं आ गई ना, अभी असत से हो गई ना, नहीं, वो सत है, क्योंकि द्रव्य के अनादि अनंत काल की सभी पर्यायों को मिलकर यहाँ महासत्ता कह दिया, और उसके एक एक सिंगल समय की पर्याय को यहाँ अवान्तर सत्ता कह दिया। यानी पूरा द्रव्य त्रिकाली कहने से पूरा अनादि अनंत पर्यायों का क्रम उसमें सुनिश्चित है। एट अ टाइम सभी पर्याय प्रकट नहीं है, प्रकट तो एक ही है, पर द्रव्य जब कहेंगे तो अनादि अनंत पर्यायों का समूह उसको हम द्रव्य कहते हैं। अनंत गुणों का समूह तो है ही है, तो जब महासत्ता कहेंगे द्रव्य को तो उसमें अनंत गुण भी आ गए, और एक एक गुण को हम जुदा जुदा कहेंगे तो अवान्तर सत्ता हो जाएगी। और अनादि अनंत पर्यायों का पूरा क्रम जिसको हम काल की अपेक्षा द्रव्य कैसा है तो अनादि अनंत आप कह देते हैं, तो अनादि अनंत है ना, अनादि अनंत सारी एक एक पर्याय करके सभी पर्यायों का समूह उसको हम द्रव्य कहेंगे, उसको महासत्ता कहेंगे, और एक एक सिंगल समय की पर्याय उसको अवान्तर सत्ता कहेंगे। यही बात यहाँ हो रही है। वो तो ऊपर बता चुके, ऊपर के पैराग्राफ में हो गए, अभी ये नया विषय चल रहा है। अभी क्या रहे, त्रिकालवर्ती तत्वों सच्चे, द्रव्य सत है तो द्रव्य त्रिकालवर्ती है, तेनी एक एक समय नी त्रणे काल नी पर्यायो पन सच्चे, यानी तीनों काल के पर्याय उसको सत कहा। उसको आप कहेंगे अभी भूतकाल की तो हो चुकी है, अभी है ही नहीं है, और भविष्य की होनी बाकी है, वो भी नहीं है, नहीं कहते, वो है, सबको मिलकर हम द्रव्य कह रहे हैं। इसलिए कहते कि तीनों काल की जो पर्याय है वो सत है, पर्याय में पहला उत्पाद न होने पची नवो उत्पाद था तो पन सच है। अभी तक वो नहीं थी, अभी हो गई ना, अभी वर्तमान में हो गई, पहले भविष्य में पड़ी थी, अभी वर्तमान में हो गई, तो फिर भी वो सत है, वही होने वाली वही हो गई है, और वो होना वो निश्चित था, वो द्रव्य के स्वभाव में पड़ा है। यानी द्रव्य के अनादि अनंत पर्यायों का पूरा ही पूरा समूह रूप उसको हम द्रव्य कह रहे हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका है, तो द्रव्य में होने वाला झलका है कि नहीं होने वाला झलका है, यानी द्रव्य में सुनिश्चित है तभी तो झलका है ना। द्रव्य में वो प्रमेय तो गुण है, तो द्रव्य में भी उसके गुण में भी और उसके अनेक एक एक पर्याय में भी है, यानी होने वाले पर्यायों में भी वो प्रमेय तो गुण के कारण वो होने वाले भी झलक गई। इसलिए एक होता है कि अभी नहीं है परंतु हुई, फिर भी वो है तो सत, क्योंकि द्रव्य कहने से पूरी वो पर्यायों का क्रम उसमें आ गया, उसी को हम द्रव्य कह सकते हैं। क्योंकि द्रव्य जानने में हमने बहुत भूल की कि हाँ मैं जीव द्रव्य इतना ही कह देते, जब मैं जीव द्रव्य हूँ तो मेरी अनादि से अनंत काल की एक एक पर्याय सुनिश्चित है, उसका क्रम सुनिश्चित है, ये उस द्रव्य में द्रव्य कहते वो आना चाहिए, तभी तो हम उसको पूरा द्रव्य कहेंगे। नहीं तो खाली वर्तमान की एक पर्याय ली और वो पर्याय को भी छोड़ना चाहते, क्योंकि द्रव्य दृष्टि करना है, इसलिए द्रव्य में कुछ बाकी नहीं रखा हमने, ख्याल में भी तो है ना, उसके बिना द्रव्य नहीं होता कभी। हाँ सामान्य है, वहाँ विशेष है ही है, विशेषों को गौण कर दिया तो जो रहा वो सामान्य है। देखो अभी यहाँ फिर पढ़ते हैं इसको, आप पढ़ेंगे,
पढ़ो पढ़ो आपको।
देखो त्रिकालवर्ती तत्वो सच है, वो त्रिकाल सारे जो द्रव्य वो त्रिकालवर्ती है ना, द्रव्य सच है ने तेनी एक एक समय नी त्रणे काल नी पर्याय पन सच्चे, तीनों काल की पर्यायों को ले लिया, पूरे सत में ले लिया उसके, प्रकट एक ही है वर्तमान की, पन सारो सारी पर्यायों को सत कह दिया। પર્યાયમાં પહેલા ઉત્પાદ ન હોય ને પછી નવો ઉત્પાદ થાય તો પણ સત છે, એ સારી સત હૈ. દેખો એ પહેલે અમને દેખાતા પેજ નંબર 55 નિકાલો, એ અમને 5 વિશેષણ દેખે તે સત્તા કે, મહાસત્તા અવાંતર સત્તા કે. 5મો પોઈન્ટ નિકાલો, મહાસત્તા અનંત પર્યાયાત્મક છે. અનંત પર્યાયાત્મક કિસકો કહેંગે? દ્રવ્ય કો કહેંગે. તીન કાલ કી પર્યાયાત્મક હૈ ઉસી કો મહાસત્તા કહા હૈ. હા, और अवांतर सत्ता एक पर्यायात्मक छे, उसके एक समय की पर्याय को हम यहाँ अवांतर सत्ता कह रहे, यही कह रहे. वो सत है ना, पण महासत्ता में सबको अनंत पर्याय को सत कह दिया है. जो तीन काल की पर्याय है वो सत में आ गई, यानी सर्वथा असत की उत्पत्ति नहीं हुई है. ख्याल में आते हैं बात? जो है ही नहीं और उत्पन्न हुआ तो कैसे ऐसा होता नहीं, उसको भी सत में ले लिया है. क्योंकि जो होना है वो निश्चित है, वो द्रव्य में वो गर्भित है. जेने ज्ञान, अभी ये ऐसा ज्ञान कुछ क्यों होता है, जेने ज्ञान स्वभाव ने जान्यो के हूं तो ज्ञान छू, सतनो जाननार छू. यानी पेज नंबर हमारा 60 है बेन, मिला आपको? अभी जो पैराग्राफ पढ़ रहे थे वही बात है, त्रिकालवर्ती वाली बात मिला ना. કે હું તો જ્ઞાન છું, સતને જાણનારો છું. આવી જેને પ્રતીત કરી તેને આ આમ કેમ એવો વિકલ્પ રહેતો નથી. અપની ક્યા યા પરકી ક્યા, જો પર્યાય જો સુનિશ્ચિત હૈ વહી હોતી હૈ, ઉસમે કોઈ ફેરફાર નહીં કર સકતા. યા એસો કૈસે? બિલકુલ, જ્ઞાન કા લક્ષણ હી તો જો હૈ ના, જાણનાર વહી તો જ્ઞાન હૈ. ઉસમે ફેરફાર કરને વાલા યા એસા હો નહીં હોતા તો અચ્છા થા, યા એસા કૈસા હો ગયા, એસા જ્ઞાની હૈ. ઓર ઉસકે યે ચાર ચાર બાર ઉપસમ શ્રેણી ચડકે ઉતરને વાળા મિત્ર તો મેં કૈસા ગયા, તો કે આમ કેમ એવો વિકલ્પ રહેતો નથી.
કોને? સમ્યક દ્રષ્ટિને.
વહી તો જીસકો જ્ઞાન, જીસને જ્ઞાન સ્વભાવ કો જાના હૈ ઉસકી બાત. ગડબડ હો રહી ના. દેખો પોતાની સામાન્ય સત્તામાંથી વિશેષ પર્યાય પ્રગટે છે તે પણ સત છે. સામાન્ય સત્તા ને પૂરા અખંડ લ્યા, મહાસત્તા લઈને સભી અનંત પર્યાયો કા સમૂહ લઈ લ્યા, વો સામાન્ય કહી લ્યા. યા દ્રવ્ય મેં સે પર્યાય પ્રકટ હોતી હૈ એસા કહો તો ભી વહી બાત હૈ, પણ વહ નિશ્ચિત હૈ, વો સત હૈ, તે પણ સત છે. એટલે પુસ્તક આવે તો જ્ઞાન થાય એમ રહેતું નથી.
દેખો યહાં પર ક્યા બતાતા હૈ,
યે મહત્વ કી બાત હૈ. કહાં સે પર્યાય પ્રગતિ? સામાન્ય મેં સે. वो मेरे सामान्य में से आई कि पुस्तक में से आई? ये 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 एक वाक्य में कैसा पलट दिया?
पुस्तक में से
अभी नहीं, कभी भी नहीं
पढ़ा. जब भी पता चला ये बात सही है, लेकिन पढ़ा तो नक्की हो गया ना, तो पढ़ने का कार्य वो उपादान का, और जो नक्की किया जो निमित्त से,
ये पढ़ना इटसेल्फ निमित्त में चला,
ये निमित्त में जाएगा. ઉપાદાન તો આપણને પડાય, ઉસ સમય આપણે જ્ઞાન કી પર્યાય ઉસ સર્વ વૈસી
હી હોય, જ્ઞાન કી પર્યાય એસી હી હોની થી. યે ઉપાદાન હૈ, વો જ્ઞાન મેં સે પ્રકટ હુઈ હૈ, કહીં બહાર સે નહીં આઈ વો.
દેખો યહાં વહી વહી બાત બતા રહે હૈ,
વો ઉસકે મહત્તા તો ઉસી કી આતી હૈ, ગ્રંથ સામને ઉસકો નહીં ભૂલના ચાહતે હૈ, ઉસકો પકડના રહે, પકડ કે રખના ચાહતે. ગ્રંથ તો થા ના, ગ્રંથ તો થા ના, ગુરુ કો તો છોડના ચાહતે, ગ્રંથ કો તો રખના ચાહતે હૈ ના. હા, દેખો દેખો આપ પડેંગે.
દેખો યહાં પર બહુત અચ્છા તેને સમજાયા, પોતાની સામાન્ય સત્તા યાને પોતે સ્વયં કે દ્રવ્ય મેં સે વિશેષ પર્યાય પ્રગટે છે, યાને કહી ભી કોઈ ભી દ્રવ્ય મેં અપની પર્યાય સ્વયં અપને સે પકડતી હૈ, પર કે કારણ સે નહીં. इसके लिए आगे उदाहरण देता है, ते पण सत छे, एटले घड़ियाळ आवे एटले केटला वागे एनु ज्ञान थाय एम रहेतु नथी, ऐसा लिखा है.
घड़ी देखने से ज्ञान नहीं होता. आप देख रहे पुस्तक में कहां लिखा है?
नहीं नहीं, मैं क्या बता बात ऐसी है कि हम जब किसी को पूछते हैं तो उसको एकदम खड़बड़ाहट होता है, क्या कर रहा है, कितना बजा रहे, घड़ी देखने के बगैर थोड़ी ज्ञान होता है। परंतु आपका जो ज्ञान है वो जानना 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 हर समय जानने रूप कार्य कर रहा है। तो क्या जाना या किसको जाना ये बताने के लिए घड़ी को जाना। तो हम तो ऐसा होशियार है कि घड़ी देखने से ही ज्ञान होता है ऐसा माना। इसलिए यहाँ गुरुदेव श्री क्या बताते हैं, पुस्तक आवे तो ज्ञान था एम रहतो नथी। तो आपने जैसे थोड़ी एकदम उत्कृष्ट उदाहरण देंगे, बात ऐसी है। हम तो गर्गोदी किसको बोलते हैं आप, गर्गोदी यानी होमली उदाहरण देते जल्दी फिट बैठ जाए। अभी जैसा अभी कोई गुरु आया इसलिए ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, पुस्तक आया इसलिए ज्ञान हो गया, दिव्य ध्वनि सुनी इसलिए ज्ञान हुआ ऐसा भी नहीं है, ये बात बताना चाहते।
देखो गुरुदेव की ये परंपरा रही कि हर एक के हाथ में पुस्तक होना चाहिए। अब कहते कि पुस्तक से ज्ञान नहीं हो रहा है, ये विरोध लगता है लोगों को, ख्याल में आई ना बात। क्योंकि पहले के जमाने की क्या पद्धति थी, कोई हाँ वहाँ प्रवचन कर रहा है सुना रहा है और वो श्रोता सुन रहे क्या पढ़ रहे हैं, क्या शब्द आ रहा है पता नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते तो ख्याल में आता है ना वो क्या क्या लिखा है उस, नहीं तो बोलने वाला बोल जाता है और वो हमारे रजिस्टर नहीं होता क्या शब्द हमने सुना, और जब सुनते सुनते तो आगे निकल जाता है प्रवचनकार और हमें तो कोई नई बात समझ में आती है। इसलिए गुरुदेव के जमाने से परंपरा रही, पहले नहीं थी वो बात नहीं है, विशेष कर उन्होंने कि हरेक के हाथ में वो शास्त्र होना चाहिए। साध्या की भी परंपरा इतनी बढ़ी उनकी जमाने से। हाँ हाँ सामान्य में से होती
द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है, जो द्रव्य भी सत्य और पर्याय भी सत्य।
हाँ वो पर्याय अपने स्वयं के जगह स्थित है, यानी वो तो उत्पाद उत्पाद से हुआ ऐसा हुआ। हाँ
उत्पाद उत्पाद से हुआ मतलब पर्याय पर्याय से हुआ,
हाँ
द्रव्य से नहीं हुई ऐसा कहना चाहते।
हाँ वो अपेक्षा से कहना है तो वो भी कहेंगे।
हाँ ये जो अपेक्षा आपने लगाई वो द्रव्य से नहीं, पहले जो लगाई
यहाँ दूसरे से नहीं आई, बाहर से नहीं आई, अपनी सत्ता में से आई,
बाहर से नहीं आई अपनी सत्ता में से।
हाँ
फिर भी जब हम पर्याय की नहीं की अपेक्षा से पर्याय
उसका जन्म क्षण है,
पर्याय उसका जन्म क्षण है।
हाँ
वो पर्याय से हुई
पर सर्वता अधर से नहीं हुई कहीं से, ये भी नहीं। हाँ
तो वो तो पर्याय की नए की अपेक्षा से देखते हैं, दो नए अलग है, दोनों अपनी अपनी नए की अपेक्षा से देखते हैं,
दोनों सापेक्ष है, पूरे सर्वथा जुदे जुदे नहीं है।
हाँ जुदे जुदे।
हाँ
द्रव्य में से पर्याय आती है, ये भी ये अपनी अपेक्षा से वो सही है।
द्रव्य परिणमता है, कौन परिणमा द्रव्य, यह परिणमति स करता, वो उसका करता है, ये वहाँ की बात है।
तो
अपने अपने षटकारक से अपने जन्म क्षण पर वो वही उत्पन्न होने वाली वही होती है,
वो एंगल से देखेंगे तो उसके द्रव्य का कोई रोल ही नहीं
रहता, रोल ही नहीं रहता, पर वो तो उस समय पर्याय रूप परिणमने की योग्यता रूप धर्म द्रव्य में पड़ा है।
हाँ
ये सर्वथा जुदी नहीं है, वो द्रव्य की ही अवस्था है, द्रव्य उससे तद्रूप है, उससे जुदा नहीं है। यानी हम पर्याय की कहीं कहीं जो मुख्यता से कहीं कहने जाते हैं तो उसका ऐसा अलग बाहर निकाल देते कि द्रव्य से कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ यानी कभी भी वो जो समीचीन जो दृष्टि उसको नहीं छोड़ना है, ये सर्वथा जुदी नहीं है। हाँ हम जिस अपेक्षा से बात कर रहे उस अपेक्षा को ख्याल में लेना है, क्यों ख्याल में लेना है, हमको द्रव्य का ही स्वरूप निश्चित करना है, क्योंकि ये प्रश्न होता है ना द्रव्य तो अनादि से तो पर्याय अभी क्यों हुई, निमित्ता है तो हुई कि नहीं, तो नहीं उस समय उस पर्याय रूप परिणमने की योग्यता रूप धर्म द्रव्य में पड़ा है, इसीलिए वो वही कल बात आई थी ना इसमें लिखा था ना, ये तो बात आ गई फिर पर्याय अशुद्ध क्यों, ये संडे को बहुत विषय चला है तो कहते उसको उसमें स्थान ही नहीं लिया, कोई गुण ही ऐसा नहीं है कि जो उस रूप परिणमे, पर्याय में है वो पर कोई गुण उस रूप परिणमा नहीं है, वहां तो उसको स्थान ही नहीं दिया स्वभाव में, वही तो वो उसको षटकारक में डाला, वो षटकारक में डाला, ये शक्तियों के शक्तियों में वो आपके प्रश्न है, शक्तियों के प्रकरण में बहुत अच्छी तरह से उनको ढूंढना है। ये जब हम राग को जुदा कैसे निकालते तो अपने में ही परिणमन हो रहा है अपने में, परंतु अपने किसी गुण के पर्याय नहीं है वो, इस तरह से लेना है उसको। है अपनी योग्यता से अशुद्ध उपादान से परिणम है, उसी को अलग अलग एंगल से अलग अलग रीति से कहेंगे। कल तो बात आई ना, राग तो जीव में ही होता है, पुद्गल में होता नहीं है। तो राग के द्वारा तो हम जीव की पहचान कराते हैं, कहां किस अपेक्षा से किस एंगल से ज्ञानी समझाना चाहते हैं उसको समझना, कहीं पर भी उनमें विरोध नहीं, ये बात पहले नक्की करना। शास्त्री उसको कहते हैं, जिनवाणी उसको कहते हैं, जिसमें कहीं परस्पर विरोध नहीं है। और हमारे मन में ऐसा जो कोई संशय उत्पन्न होता है, विरोध लगता है, तो हमारी कहीं भूल हो रही है, तो हमें अपने मत फिर तपासना चाहिए कि कहां हम गलत कर रहे हैं। जैसे सुबह बात आती ना, जो सूत्र में बताया तो सर्वथा सही है, फिर उसका अर्थ हमें जब तक नहीं भासित होता तो हम उस एंगल से हमें सोचना है। हमारे प्रयत्न क्या होते हैं, अरे हाउ इज इट पॉसिबल, हम उसको एक सिद्धांत के द्वारा दूसरे सिद्धांत को उड़ा देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। सारे ही सिद्धांत हमको वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए चल रहे हैं। ज्ञानियों ने इतनी अलग अलग अपेक्षाओं से वस्तु स्वरूप बता दिया है, उनको तो समझ में आ गया था, इतनी वातापच्ची करने की क्या जरूरत थी आपको समझाने की, ख्याल में आई ना बात, कि वस्तु स्वरूप क्लियर हो जाए। कि जब तक ये वस्तु का स्वरूप ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट भाषित नहीं होता है, तब तक तो सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। इसलिए ये जो सब बेसिक जो सिद्धांत है, सभी द्रव्यों पर ये लागू हो रहे हैं ना, कि प्रत्येक द्रव्य हम उसी को कहते हैं, गुणों का समूह तो है ही है, अनादि अनंत पर्यायों का भी समूह है वो, और उसको सबको बिना भेद किए पूरा समूह ले लिया तो उसी को हम सामान्य कहेंगे, और उसी के एक एक पर्याय को अलग अलग कंसीडर किया तो उसको विशेष कहेंगे। तो विशेष कहीं बाहर से नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं पुस्तक में से नहीं आता ज्ञान, वो सामने जिसमें जो निमित्त है वो उचित निमित्त होता है, पर उसमें से वो ज्ञान है, क्योंकि ये तो अक्षर है, ये तो जड़ है, ये तो जड़ की पर्याय है, जड़ की पर्याय में से ज्ञान की पर्याय कैसे हो गए, यानी सीधा न्याय है। वही तो वाणी ले लो या पुस्तक ले लो, गुरु ले लो, ये तो वो भी परद्रव्य है, वो उनकी पर्याय अपने में हो रही है। देखो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने में अपने से हो रहा है, पर ये नक्की करो, यानी द्रव्य ही उस रूप परिणमित हो रहा है, वो सामान्य से में आ रहे, पहले ये नक्की है बिल्कुल, फिर वो पर्याय में से पर्याय, फिर वो षटकारक से हुई, वो सब बातें है, पहले ये नक्की करो। यहाँ कहते ना, देखो आगे देखते, पुस्तक आवे तो ज्ञान था एम रहतु नथी, सामान्य सत्ता एक रूप छे, विशेष सत्ता अनेक रूप छे। जब सामान्य सत्ता कह दिया तो उसमें कोई भेद दिखाई दे तो सामान्य नहीं कहेंगे उसको, सब सभी विशेषों को गौण कर दिया, पूरा द्रव्य अखंड अभेद पूरा ले लिया, तो कभी भी देखो वही का वैसा ही दिखेगा, उसको कहेंगे सामान्य। सामान्य एक सदृश एक रूप रहता है हमेशा, और विशेष सत्ता अनेक रूप है। विशेष सत्ता पर्याय की तरफ उसी द्रव्य को देखो तो वो द्रव्य ही अनेक रूप दिखाई देगा, वहां पर्याय की तरफ से, क्योंकि द्रव्य अभी हम सोने को देखना है तो हमारे पास बहुत सारे गहने हैं, सोने की दृष्टि से देखो तो पूरा एक ही सोना दिख रहा है, उसी सोने को हम गहनों की तरफ से देखते क्या डिजाइन है, तो कोई बैंगल है, कोई हार है, कोई क्या है, कुंडल है और क्या क्या है, तो उसमें वो विशेष है, तो विशेष तो अनेक रूप दिखेंगे और सामान्य एक रूप दिखेगा, ये कह रहे हैं आप। जड़ नहीं होगी ऐसा नहीं है, चेतन की पर्याय चेतन में है, जड़ की पर्याय जड़ है, ऐसा नहीं है। जानना इटसेल्फ चेतन की पर्याय है ना, तो द्रव्य चेतन है, जीव द्रव्य है, उसकी सभी पर्याय चैतन्यमय है, जीव का अस्तित्व भी, जीव की सत्ता भी चैतन्यमय है, जड़ की सत्ता जड़मय है, जड़ की पर्याय जड़मय है, पर्याय को जड़ नहीं कहा यहाँ पर, जीव के पर्याय को कभी भी जड़ नहीं कहा है, ख्याल में आई बात। द्रव्य चेतन है ना, तो उसकी पर्याय जड़ कैसी हो जाएगी, वो स्व को जानो या पर को जाने, किसी को भी, वो है तो चैतन्य की परिणाम। हाँ, ये नया पैराग्राफ पढ़ना है, सामान्य सत्ता एक रूप छे, वहां से
पढ़ रहे ना, पढ़ो थोड़ा सा।
हाँ, सामान्य सत्ता एक रूप छे, विशेष सत्ता अनेक रूप छे। देखो, सामान्य सत्ता यानी महासत्ता कहा, और उसी को एक एक पर्याय की अपेक्षा अलग अलग कहते हैं, उसी को विशेष सत्ता कहा। वो कोई अन्य द्रव्य को नहीं लिया, यहाँ पर एक ही द्रव्य में बात। विशेष पर्यायो नो नाश थता सामान्य सत्ता नो नाश थई जतो नथी। पर्याय को विशेष कहा, पर्याय का नाश होने पर सामान्य सत्ता का नाश नहीं होता। अभी हमने वही तो कह रहे, अभी हम 9 नंबर के पर्याय का भी नाश हुआ, तो द्रव्य नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि था, समय दृष्टि हुआ, तो मिथ्या दृष्टि पना नष्ट हुआ, मिथ्या तो पर्याय नष्ट हो गई, तो द्रव्य नष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। ये कहते विशेष पर्यायों नो नाश थता सामान्य सत्ता नो नाश थई जतो नथी। अभी स्थूल रूप से देखना है तो मनुष्य पर्याय चल रही थी, जीव द्रव्य है उसकी मनुष्य पर्याय चल रही थी। ये सामान्य प्रदेशत्व गुण के अपेक्षा भी इसको, या उसको व्यंजन पर्याय भी कहते, प्रदेशत्व गुण छोड़ दो, व्यंजन पर्याय। अब वो देव हो गया तो मनुष्य पर्याय का नाश हो गया। यहाँ लिखा ना विशेष पर्याय नो नाश थता, जीव के जीव का नाश हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या लिखा, सामान्य सत्ता का नाश नहीं होता, पर्याय पलट गई है, अन्य कोई पर्याय गई है। एक पर्याय का नाश हुआ पर वहां दूसरी पर्याय विद्यमान है, और सामान्य तो है समय विद्यमान है। जे सामान्य सत्ता छे ते विशेष सत्ता पणे नथी, यानी विशेष सत्ता जुदी ऐसा नहीं कहा, वो स्वरूप नहीं है। क्योंकि अभी हम सामान्य की बात करें तो सामान्य सामान्य रूप से, वो विशेष रूप से नहीं है। जैसे हमने पहले देखा महासत्ता वो अवान्तर सत्ता नहीं है। विशेष सत्ता पोते जो सामान्य रूपे हो तो ते विशेष कदी पलटी सके नहीं। क्या कहा, विशेष सत्ता को अगर सामान्य सत्ता, सामान्य सत्ता तो सामान्य उसी को कहेंगे जो कायम रहती है वैसे की वैसी, विशेष सत्ता ही जुदी जुदी है। अगर विशेष सत्ता को ही सामान्य मानेंगे तो कभी पलट नहीं सकते। माटे सत्ता मां सामान्य ने विशेष एवं बे प्रकार छे, सामान्य सत्ता एक रूप छे ने विशेष सत्ता अनेक रूप छे। जीव अजीव ज्ञानी अज्ञानी ते बधा सामान्य सत्ता मां समाई जाय छे, तेमा कोई जीव छे। अभी ये महासत्ता में जो पहले से हमने सभी द्रव्यों को ले लिया, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य सब कुछ, कोई जीव छे कोई अजीव छे कोई ज्ञानी छे कोई अज्ञानी छे, ते बधानी अवांतर सत्ता भिन्न भिन्न छे। अब एक ही द्रव्य में लेना है तो उसकी सभी पर्यायों को मिलकर महासत्ता कहेंगे, एक एक पर्याय को जुदा जुदा उसको अवांतर सत्ता कहेंगे।
द्रव्य महासत्ता रूपे सत छे अने पर्याय ते विशेष सत्ता छे, मिथ्यात्व नो नाश थईने। अभी एक पर एक द्रव्य में ही सामान्य और विशेष का भेद कर दिया उन्होंने, कि द्रव्य को अगर हम महासत्ता कह रहे हैं तो पर्याय को विशेष सत्ता कहेंगे। मिथ्यात्व नो नाश थईने सम्यक तो पर्याय उपजे छे, त्या मिथ्यात्व नो नाश थता द्रव्यनी सत्तानो नाश थई जतो नथी। तेम जे सम्यक्तोनी उत्पत्ति थता द्रव्यनी सत्तानी उत्पत्ति थती नथी। सामान्य विशेष सत्ता ते द्रव्यनो जो स्वभाव छे तेने जे नथी देखातो ते संयुक्ति पर्याय थाय छे एम माने छे। કાલનો કઠિયારો હતો તે આજે કેવળ જ્ઞાન પામ્યો, ત્યાં હો ધન્ય તારો અવતાર એમ પ્રદેશ પ્રમોદભાવ આવે, ને તે પ્રમોદભાવ જો સામા પદાર્થની નવીનતાને કારણે થવાનું માને તો તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે। જ્ઞાનીને પ્રમોદ આવે તો તે પરને કારણે નથી માનતા, જગતના પદાર્થોમાં વિશેષ વિશેષ ભાવો तो अनादि अनंत थया ज करशे, तेने कारणे जो राग थवानु माने तो अनादि अनंत राग थया ज करशे, માટે તે માન્યતા મિથ્યા દ્રષ્ટિની છે. શબ્દ
એને જૈસે યહાં જ્ઞાન પર કે કારણ નહીં હો રહા હૈ તો કોઈ ભાવ હુઆ ના શુભાશુભ ભાવ વો તો પર કે કારણ હોતે કે નહીં હોતે ગુસ્સા આયા વો તો પર કે કારણ હુઆ કે નહીં હુઆ યહાં કહેતે કે જ્ઞાની કો પ્રમોદ આયા અરે ઉસ જીવને કૈસા પુરુષાર્થ કિયા કૈસા જીવ સાધારણ સામાન્ય ઓર ઉસને કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કિયા તો ઉસકો પ્રમોદ આયા પણ તો દૂસરે કો દેખ કર નહીં આયા વો સ્વપ્ને આયા એ લિખા ને અભી પરને કારણે નથી માનતા. અભી યહાં એક ઉદાહરણ પ્રમોદ કા ઉદાહરણ દિયા. અભી એસે ભી ગુસ્સે કી વાલી બાત કરો રાગ દ્વેષ કે પરિણામ કોઈ ભી લે લો હરેક મેં યહી બાત ઘટિત હોગી. પેજ નંબર હૈ 61.
શબ્દ સમય સત, અર્થ સમય સત અને જ્ઞાન સમય સત, ત્રણેય સત છે. તેમાં શબ્દ સમયને લીધે જ્ઞાન સમય નથી. જો શબ્દને લીધે જ્ઞાન થાય તો જ્ઞાન સમયનું જ્ઞાન સમય શું સત નથી? જ્ઞાન સમય પણ સત છે. તે શબ્દથી કે સામા પદાર્થોથી નથી. જો આવી સત્તાના જ્ઞાનમાં ભેદ જ્ઞાન અને વિતરાકતા છે. અને ક્યાં બતાના ચાહતે હૈ કે ये तीनों है ना, शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय, ये तीनों ही सत है. यानी तीनों की सत्ता जुदी जुदी है. तो कहते हैं शब्द समय के कारण से ज्ञान समय नहीं है, क्योंकि शब्द समय तो मान लो के उद्गल का है और ज्ञान समय है वो जीव का है. तो इसलिए इनाथ करने ये कारण नहीं. जो शब्द ने लीधे ज्ञान था है, તો જ્ઞાન સમય શું સત નથી? એને વો આપણા કાર્ય નહીં કરી શકતા હૈ, વો તો આપણા કાર્ય કરેગા હી કરેગા. જ્ઞાન સમય પણ સત છે. તે શબ્દથી કે સામા પદાર્થ એટલે અર્થ સમયથી નથી. જો આવી સત્તાના જ્ઞાનમાં ભેદ જ્ઞાન, એને એસે સત્તા કા જ્ઞાન હોતા હૈ તો હમે ભેદ જ્ઞાન હોગા ઓર ઉસસે વિતરાગતા પ્રકટ હોગી. અસ્તિ નાસ્તિ ઉત્પાદ વે ધ્રુવ ગુણ પર્યાય એ બધું એક સત્તામાં સમાઈ જાય છે. સત્તાથી તે કાંઈ જુદું નથી. તું બધાનો જાણનારો રે. પહેલા એક પુસ્તક જોતા એવા આદરભાવ થાય છે કે આહો અપૂરો વસ્તુ છે. પછી તેને તે પુસ્તક જોતા એકદમ આનંદનો ભાવ થાય કે આ એમ કેમ. તો કહે છે કે તે પણ સત છે. આદરભાવની પર્યાય પણ સત ને અનાદરભાવની પર્યાય પણ સત. પુસ્તકને કારણે આદરનો રાગભાવ અને અનાદરનો દ્વેષભાવ થયો નથી. બધું સત છે. અને એ જો કોઈ પરિણામ હોય રાગ દ્વેષ કે, તો આપણે સ્વયં કે કારણ છે હોય પુસ્તક છે કે નહીં, એ વાત બતાના ચાહતે. પુસ્તકને થર્ડ લાઈન પડતા હું મેં પુસ્તકને અભી ફોર્થ લાઈન કારણે આદરનો રાગભાવ કે અનાદરનો દ્વેષભાવ થયો નથી. બધું સત છે. એમ જેને નક્કી કર્યું ત્યાં પોતાનો જ્ઞાતાભાવ નક્કી થયો. હવે તેને હવે રાગ કેટલો થશે? અનંતાનુબંધીના રાગાદી ભાવો તો તેને થશે જ નહીં. અસ્થિરતાના અતિ અલ્પ રાગાદી થશે. અસ્થિરતા એને આભી સ્વરૂપ મેં જો સ્થિરતા નહીં હો રહી હૈ વો અસ્થિરતા કા રાગ હૈ. અલ્પ હૈ. બધું સચ છે ને હું જ્ઞાન છું એમ નક્કી કરનારને રાગનું જોર તૂટી જાય છે. હવે અનંત સંસારની ઉત્પત્તિ કરનારો રાગ તો તને થતો જ નથી. અનંત સંસારની ઉત્પત્તિ કરનારો રાગ એને કોણ સા રાગ? હા બેન, ક્યાં બોલતે? અનંતાનુબંધી ક્રોધમાં. બસ તુમકો એક દોરી મિલ ગયા જબ ઉસકો ખીંચતી હમેશા.
એ તને ચાહીએ કા તેને ચાહીએ? ઉપર લિખા ના અનંતાનુબંધી રાગાદી ભાવ તો તેને થશે જ નહીં. અસ્થિરતા ના અતિ અલ્પ રાગાદી થશે. બધું સચ છે ને હું જ્ઞાન છું એમ નક્કી કરનારને રાગનું જોર તૂટી જાય છે. હવે અનંત સંસારની ઉત્પત્તિ કરનારો રાગ તો તેને થતો જ નથી ને?
સત્તાને અસ્થિ નાસ્તિ રૂપ કહો, ઉત્પાદ વે ધ્રુવ રૂપ કહો કે ગુણ પર્યાય સ્વરૂપ કહો, તે બધા જુદા જુદા નથી, પણ એક સ્વરૂપ છે. એક જ સત્તામાં એ બધું સમાઈ જાય છે. આવી સત્તા તે દ્રવ્યનું લક્ષણ છે, જેમ ઉષ્ણતા તે અગ્નિનું લક્ષણ છે તેમ. પરંતુ જેમ અગ્નિ અને ઉષ્ણતા જુદી જુદી નથી, ત્યાં તેમ દ્રવ્ય અને સત્તા જુદા જુદા નથી. દ્રવ્ય અને સત્તા એક સ્વરૂપ છે.
સત્તાની અસ્થિ નાસ્તિ કહો, મહાસત્તા કહા તો વો અવાંતર સત્તા કી અપેક્ષા નાસ્તિ હૈ, એ ઓર અવાંતર સત્તા મહાસત્તા વો અસ્થિ નાસ્તિ હો ગઈ. ઉત્પાદ વે ગૃહ રૂપ હમને દેખ લિયા, મહાસત્તા વો ત્રિલક્ષણ રૂપ કહા, એક હી પૂરે દ્રવ્ય કો સત કહા, ઉત્પાદ વે ગૃહ રૂપ હૈ વો મહાસત્તા કહે, ઓર અકેલે ઉત્પાદ કો અકેલે વ્યય કો અકેલે ગૃહ કો અવાંતર સત્તા કહે. ગુણ પર્યાય રૂપ અભી તો હો ગઈ બાત, ગુણ પર્યાય રૂપ દ્રવ્ય હૈ ઉસકો સામાન્ય સત્તા કા, ઓર ઉસકી એક એક વિશેષ કો દેખના વો વિશેષ સત્તા હો ગઈ, ઉસી કો હમ મહાસત્તા અવાંતર સત્તા ઉસકો ભી કહે સકતે. તો એ સબ જુદા નહીં, એક સ્વરૂપ હૈ. મહાસત્તા ટોટલી જુદી નહીં હૈ, એક એને એક જ સત્તામાં બધું સમાઈ જાય છે.
આવી સત્તા તે દ્રવ્યનું લક્ષણ છે, જેમ ઉષ્ણતા તે અગ્નિનું લક્ષણ છે તેમ. પરંતુ જેમ અગ્નિ અને ઉષ્ણતા જુદી જુદી ચીજ નથી, તેમ દ્રવ્યને સત્તા જુદા જુદા નથી. દ્રવ્યને સત્તા એક સ્વરૂપ છે. પહેલાં સત્પનું નક્કી થયા પછી તેના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય. વસ્તુ છે કે હા વસ્તુ છે એમ સત્પનું નક્કી કર્યું પછી તે જીવ છે કે અજીવ છે તે નક્કી થાય.
દેખો કરના નિયોગ કી ભી પદ્ધતિ હૈ, પહેલે તો સત કહેંગે, પહેલે જો કોઈ અનયોગ દ્વાર હૈ તો ઉસમે સત પ્રરૂપના કહેતે હૈ, જિસકો સમુદ કીર્તન ભી કહેતે હૈ. અભી ભી હમારા બંધકો કી બાત ચલ રહી, તો વો બંધક હૈ બંધક હૈ વો સબ હર એક માર્ગણા મેં બંધક હૈ, ઇસ તરહ સે વો બતા દિયા, ફિર ઉસકે વિશેષ બાતે બાદ મેં કર, કોઈ ભી નિકાલ લો. જૈસે ધવલા કી પહેલે ભી પહેલી દો પુસ્તકો મેં ક્યા હૈ, સત પ્રરૂપના હૈ, એને બસ યે માર્ગણા વાલે જીવ હૈ, યે વાલે હૈ, યે ગુણસ્થાન વાલે માર્ગણા વાલે બસ હૈ 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 ઇતના બતા દિયા, વો સત હૈ. ફિર ઉસકી સંખ્યા કિતની હૈ, ઉસકા કિતને કાલ તક રહેતે હૈ, કિતને અંતર હોતા હૈ, વો સબ બાદ મેં લંબે ચોડે ઉસકે બહોત અનયોગ દ્વાર હો જાતે. યહાં પર ભી સત કહેને સે પહેલે ઉસકી સત્તા સિદ્ધ કર રહે હૈ ને. પહેલા સત્પનું નક્કી થયા પછી તેના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય. તત્વાર સૂત્ર મેં સૂત્ર હૈ ને, કૌન સા સત સંખ્યા સ્વામિત્વ વો પૂરા
વસ્તુ છે,
એ ઉસમે નિર્દેશ ભી કહેતે, નિર્દેશ સંખ્યા સ્વામિત્વ વગેરે.
હા અભી ફિફ્થ લાઈન મેં આયે હમ. વસ્તુ છે કે હા વસ્તુ છે એમ સત્પનું નક્કી કર્યું પછી તે જીવ છે કે અજીવ છે તે નક્કી થાય. પછી તેના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય તથા ઉત્પાદ વે ધ્રુવ નક્કી થાય. તારી સત્તા તારામાં છે, તારા ઉત્પાદ વે ધ્રુવ તારી સત્તામાં છે. તું જ્ઞાન સ્વભાવે સત છો ને જગતના પદાર્થો તેમના સામાન્ય વિશેષપણે સત છે. તારે લઈને પરનું વિશેષ નથી ને પરલે લઈને તારું વિશેષ નથી. આમ જે સમજે તેને પ્રથમ તો શ્રદ્ધામાં વિતરાગતા થઈ જાય છે, પછી ક્રમે ક્રમે વિતરાગ થઈને કેવળ જ્ઞાન પામે છે. આ સિવાય બીજો કોઈ શાંતિનો ઉપાય નથી. ગાથા 10મી શરૂ કરતા પહેલા ગાથા 8મી અને ગાથા 9મીના ભેદ જ્ઞાનનું કારણ કયું હતું તે ટૂંકામાં કહે છે. સત્તા સામાન્ય રૂપે છે તે વિશેષ રૂપે નથી. યાની જો સત્તા સામાન્ય રૂપ સે હૈ વહી સત્તા વિશેષ રૂપ સે નહીં હૈ. છતાં તે સત્તાથી સામાન્ય અને વિશેષપણાના પ્રકાર જુદા નથી. અસ્તિત્વરૂપ, અસ્તિત્વ સ્વરૂપ, નાસ્તિત્વ સ્વરૂપ, ત્રણ લક્ષણ સ્વરૂપ, ત્રણ લક્ષણ સ્વરૂપથી રહિત, એક સ્વરૂપ, અનેક સ્વરૂપ, સકલ પદાર્થ વ્યાપી, એક પદાર્થ વ્યાપી, સકલ રૂપ, એક રૂપ, અનંત પર્યાય રૂપ, એક પર્યાય રૂપ, એ બધા પ્રકાર સત્થી પૃથક નથી. એ બધા પ્રકારો પૃથક પૃથક હોવા છતાં સત્તાથી કોઈ જુદા નથી. બધા પદાર્થ છે અને પર્યાયો પણ છે, છે તે સ્વતંત્રતા બતાવે. છે તે કોને લઈને છે, એમ કેમ છે એવા પ્રશ્નને અવકાશ નથી. છે તે કોઈને લઈને હોય તો છે રહેતું નથી. દ્રવ્ય છે, ગુણ છે, પર્યાય છે, જીવ છે, અજીવ છે, અંશ છે અને અંશી પણ છે. તે છે, છે ને છે તે કોને લઈને હોય એવો પ્રશ્ન જ રહેતો નથી. યાની જો હૈ સત સ્વરૂપ જિસકો કહા તો સત હંમેશા રહેતા હી હૈ. સત કિસી સે ઉત્પન્ન નહીં હોતા હૈ, ના કિસી પર કે કારણ સે સત હોતા હૈ. યાની સત્તા સ્વરૂપ જો હૈ વહી દ્રવ્ય કા લક્ષણ હૈ. ઇસલિયે કહેતે છે, છે ને છે તે કોને લઈને હોય એવો પ્રશ્ન જ રહેતો નથી. છે એમાં ગુરુને લઈને જ્ઞાન થાય અને ધર્માસ્તિકા એના કારણે ગતિ થાય એમ છે જ નહીં. ક્યા કહા? હા દેખો ક્યાં બતાતે હૈ, જો હૈ ના ઉસકી સત્તા હૈ તો પર કે કારણ નહીં હૈ. તો કિસકી સત્તા હૈ? શિષ્ય કી ભી સત્તા હૈ ઓર ગુરુ કી ભી સત્તા હૈ. તો ક્યા કહે રહે હૈ, ગુરુ ને લઈને જ્ઞાન થાય તો ઉસને સત્ર કો નહીં માના. યાની ગુરુ ભી સત સ્વરૂપ હૈ ઓર શિષ્ય ભી સત સ્વરૂપ હૈ. ગુરુ કે પાસ ભી જ્ઞાન હૈ, શિષ્ય કે પાસ ભી જ્ઞાન હૈ. દોનો કા જ્ઞાન અનાદિ સે જાનના 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 રૂપ કાર્ય કર રહા હૈ. લેકિન યહાં ક્યા બતાતે હૈ, ગુરુ ને લઈને જ્ઞાન થાય એક વાત બતાય ઓર દૂસરી ક્યા વાત બતાતે હૈ, ધર્માસ્તિ કા એના કારણે ગતિ થાય. યાની ગતિ ઓર સ્થિતિ રૂપ જો કુછ પરિણામન હોના હૈ વો તો પ્રત્યેક યાની જીવ ઓર પુદ્ગલ દ્રવ્ય મેં ક્રિયાવતી શક્તિ નામ કા જો ગુણ હૈ ઉસકે કારણ સે વો દોનો હી દ્રવ્ય સ્વયં અપને શક્તિ સે સ્વયં અકેલે અકેલે ગતિ રૂપ યા સ્થિતિ રૂપ પરિણમતે હૈ. અભી ઉસમે જબ વો સ્વયં પરિણમતે એક ક્ષેત્ર સે દૂસરે ક્ષેત્ર મેં જાવે તબ ઉસકો ધર્માસ્તિ કાય નિમિત્ત રૂપ સે હૈ. ઇસલિયે ક્યા સમજા રહે હૈ કે ધર્માસ્તિ કાયના કારણે ગતિ થાય એમ છે જ નહીં. તો ગુરુથી શિષ્યને જ્ઞાન થાય એમ છે જ નહીં એસા બતાના. ઇસલિયે ગુરુ એકદમ ખુશ હો ગયે કે મેં ગુરુ આ ગયા બતા. અસ્તિપનું સ્વતંત્રતા અને વિતરાગતા એમ બે વાતને જણાવે છે. સામાન્ય વિશેષના ભેદો પાડો તો સામાન્ય અંશમાં વિશેષ નથી અને વિશેષ અંશમાં સામાન્ય નથી. પણ એમાં ભેદ ન પાડો તો છે માં કોઈ બાકી રહેતું નથી. અસ્તિ નાસ્તિ આદિ ભેદો કયા તે બધા સત્તાથી જુદા નથી. એક સમય સત્તા જો તો લોકાલોક એમ ને એમ છે, બધું છે તે કોઈને લઈને નથી. છે વિશેષપણે હોય કે નાસ્તિપણે હોય પણ તે કોઈને લઈને નથી. આમાં આગુ પાછું કરવાનું રહેતું નથી. છે તે જાણનાર છે, તે જાણનાર રહે છે એમ સ્વતંત્રપણે તું જાન. કોની કોઈને લઈને કોઈ માનવામાં ન્યાયકતા રહેતી નથી. અહીં પંચાસ્તી કાયમાં જ્ઞાન પ્રધાનતાથી વાત કરેલ છે. હવે ત્રણ પ્રકારના લક્ષણથી બતાવે છે. એ લક્ષણો જ્ઞાન કી મુખ્યતા સે બાત કરતે હૈ
દોનો હી જગહ
યહાં પર ભી ઉધર તો હી
रखेंगे।
जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कानो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। वीरेश भाई